थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से प्रकाशित वाक्य पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है भविष्य में कलीसिया और उसका स्वामी। इसके लेखक यहुन्ना हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
मेरे मसीह ने मुझको बचाया, उसका धन्यवाद। मेरे मसीह ने मुझको बचाया, उसका धन्यवाद।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, जो बाइबल की अंतिम पुस्तक है। तो इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से दिया है, ताकि हम आपके जीवित और सामर्थी वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हमारे श्रोता मित्र अलग अलग स्थानों पर रेडियो के निकट बैठे हैं ताकि आपके वचन में से सुने और सीखें, हमारी विनती है कि आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें और अपने वचन के द्वारा प्रत्येक से बोले और बातचीत करें, ताकि हर एक आपके वचन को समझकर अपने जीवन में ग्रहण करने पाए और उसके अनुसार चलने पाए। हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, दुनियावी चिंताओं से, शैतान के छल प्रपंच से आप उनकी रक्षा करें। आज के अध्ययन पर अपनी आशीष दें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हमने यहुन्ना के द्वारा से लिखे बातों को देखा है और हम देख रहे हैं कि यहूना ने देखा कि एक स्त्री है जो प्रसव पीड़ा में है। फिर उसने एक लाल अजगर को देखा, वह उस स्त्री के सामने खड़ा हो गया कि ज्यों ही उसका बच्चा उत्पन्न हो त्यों ही वह उसे खा जाए, परंतु उसकी आशा टूट गई। इन बातों को हमने पिछले अध्ययन में भी देखा है और क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे स्त्री का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। आइए हम पढ़ें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय उसके 5 और 6 पद में। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह बेटा जनी तो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया, और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। मेरे प्रियो, यहां पर लिखा है बेटा, यह प्रभु यीशु मसीह है, वह यहां स्पष्ट पहचाना जा रहा है, और मैं आशा करता हूं कि आप इस बेटे को कलिसिया नहीं कहेंगे जैसा अनेकों ने किया है। लिखा है लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था। यह प्रभु यीशु का स्पष्ट संदर्भ है। भजन संहिता 2:9 में लिखा है, तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। प्रेरितों के काम 4 में सताए जाने वाले विश्वासी भजन 2 का संदर्भ देते थे और लोहे के दंड से राज करने वाले को प्रभु यीशु कहते थे। मसीह यीशु इस पृथ्वी पर सब वैर भाव विरोध और विद्रोह का दमन करने के लिए आएगा। वह यह कैसे करेगा? वह उन्हें लोहे के डंडे से तोड़ेगा और कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर देगा। यदि शांति की बातें करने वाले किसी कारगर योजना के साथ कार्य करें तो विद्रोह का दमन थोड़ी बहुत हिंसा से करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है कि विद्रोह का दमन किया जाए। इस विद्रोही संसार में प्रभु यीशु कैसे सत्ता धारण करेगा, आप ही बताएं। मान लीजिए कि वह किसी देश की राजधानी में प्रकट होता है, तो क्या आप सोचते हैं कि वे उसके समक्ष आत्मसमर्पण करके उसे अपना संपूर्ण अधिकार दे देंगे? यदि आप हां कहेंगे तो मैं पूछूंगा कि ऐसा है तो वे आज उसे सर्वाधिकार क्यों नहीं देते? मेरे मित्रों, संसार उसे विद्रोह कर रहा है। शायद आप अहिंसा मानने वालों में से एक हैं, आपको रक्तपात अच्छा नहीं लगता है, आप हिंसा और युद्ध का पक्ष नहीं लेते हैं। क्या हम सब ऐसे नहीं हैं? परंतु विद्रोह का दमन करने के लिए हिंसा की आवश्यकता होती है। प्रभु यीशु राज्य करेगा, लिखा है, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास पहुंचा दिया गया। यह प्रभु यीशु के स्वर्गरोहण का विचार है। सुसमाचार वृत्तांतों में प्रभु यीशु की मृत्यु पर बल दिया गया है। पत्रियों में प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर बल दिया गया है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में प्रभु यीशु के स्वर्गरोहण पर बल दिया गया है। प्रोटेस्टेंट मत और रूढ़िवादी मत ने प्रभु यीशु के स्वर्गरोहण को अनदेखा किया है, और यह एक कारण है कि हमने प्रभु यीशु मसीह की वर्तमान सेवा पर अधिक ध्यान नहीं दिया है। देखिए प्रेरितों के काम 1:9-11 पद में वह लिखता है, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक स्वर्गरोहित मसीह का अनावरण है, महिमामय मसीह जो अपने संपूर्ण महिमा में आने वाला है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक स्वर्गरोहण के तथ्यों पर आधारित है। वही पुस्तक की मुहरें खोल रहा है जिसके परिणाम स्वरूप यह सब हो रहा है जो हम देखते आ रहे हैं। इब्रानियों के पत्री 12:2 में हमें कहा गया है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। विश्वासी प्रायः सोचते हैं कि वह आराम से बैठ गया है, परंतु वे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को नहीं जानते। वह वहां निष्क्रिय नहीं बैठा है, वह स्वर्गरोहण के कारण बहुत कुछ करेगा और आज कलीसिया के साथ वह सेवा में है। हम आगे पढ़ते हैं, वह बेटा जनी। यहां उस स्त्री की पहचान स्पष्ट होती है क्योंकि प्रभु यीशु इसराइल ही से निकला था। शरीर के भाव से वह इसराइल की संतान था और कलीसिया उससे उत्पन्न हुई। मैं एक बार फिर से पौलुस की बात को दोहराता हूं, रोमियो के पत्र 9 अध्याय उसके 4 और 5 पद को। वे इसराइली हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। और गलातियों के पत्र 4 अध्याय उसके 4 और 5 पद में वह कहता है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। व्यवस्था के अधीन या मूसा की व्यवस्था थी जो इसराइल के नियम थे। इसराइली होने के कारण वह व्यवस्था के अधीन था। गलातियों के पत्र 3 अध्याय के 16 पद में पौलुस लिखता है, अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। इससे पूर्व के इसराइल एक जाति बने, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि वह उसे एक बहुत बड़ी जाति बनाएगा और उसमें से एक बीज उत्पन्न करूंगा। यह प्रभु यीशु है। हमने यशायाह नबी की पुस्तक 9 अध्याय उसके 6 पद में देखा है, जिसमें लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है। यशायाह एक इसराइली था और इसराइल के लिए ही भविष्यवाणी करता था। अतः हमारे लिए का अर्थ है इसराइल के लिए, न कि किसी कलीसिया के लिए या किसी अन्य जाति समुदाय के लिए। हम पढ़ते हैं, आगे लिखा है, और वह स्त्री उस जंगल में भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी। महाक्लेश की उग्रता के समय इसराइल के शेष जन परमेश्वर द्वारा सुरक्षित किए जाएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि वे पेत्रा नगर में चले जाएंगे क्योंकि वह चट्टानों में बना सुरक्षित नगर है, परंतु वह नगर बम वर्षा से सुरक्षित नहीं है। अतः मैं नहीं जानता कि यह कौन सा स्थान होगा। जो बात वचन में प्रकट ना हो तो उसके बारे में ऐसे निश्चित बात कहना त्रासदीपूर्ण है। अतः यदि आप अनुमान लगाते हैं तो यह अवश्य कहें, मेरे विचार में या मेरा मानना है, ताकि वह स्पष्ट हो सके। आगे हम बढ़ते हुए देखेंगे मिकाएल प्रधान स्वर्गदूत और अजगर में युद्ध। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय के 7 से 9 पद में लिखा है, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। मेरे प्रियो, हमारे सामने एक विस्मयकारी प्रकाशन है। कहता है, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ इस युद्ध के लिए कुछ नहीं कर सकेगा। वह तो जब से आरंभ हुआ है किसी भी युद्ध के लिए कुछ नहीं कर पाया है। स्वर्ग में युद्ध की कल्पना करना कठिन है, परंतु शैतान अब भी स्वर्ग में जा सकता है और जब तक वह वहां जाता रहेगा यह समस्या उत्पन्न होती रहेगी। मेरे प्रियो, अय्यूब की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर के पुत्रों के साथ शैतान भी परमेश्वर के समक्ष आया। हम इसे अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय और 2 में देखते हैं। उसे भी उतना ही प्रवेशाधिकार है, वह सबसे बड़ा बनाया गया था। जकरिया की पुस्तक 3 अध्याय उसके 1 और 2 पद में भी लिखा है, फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़ के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़ के, क्या यह आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं है? शैतान को परमेश्वर के निकट आने का हियाव है और वह परमेश्वर के साथ बात भी करता है। लुका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसके 31 पद में लिखा है, शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। उसने जाकर परमेश्वर से कहा कि वह शमौन पत्रस को परखना चाहता है और उसे अनुमति मिल गई। हम यहां पर देख रहे हैं मिकाइल, एक प्रधान स्वर्गदूत है। यहूदा की पुस्तक में यह कहा गया है, यहूदा उसके 9 में, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। मेरे प्रियो, स्पष्ट है कि प्रधान स्वर्गदूत और भी हैं, परंतु इसराइल के लिए मिकाइल की सेवा विशेष है। दानियेल नबी की पुस्तक 10 अध्याय के 13 पद में लिखा है, फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाइल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। मिकाइल मुख्य प्रधानों में से है, यद्यपि प्रधान स्वर्गदूत अनेक हैं, धर्मशास्त्र में केवल मिकाइल और जिब्राइल के ही नाम हैं। दानियेल नबी की पुस्तक 10 अध्याय के 21 पद में भी हम इसे देखते हैं, जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा है वह मैं तुझे बताता हूं, उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिकाइल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं है। और आगे हम देखते हैं, तुम्हारे प्रधान मिकाइल, परमेश्वर दानियेल से बातें कर रहा है, अतः तुम्हारे, तुम्हारे से अर्थ है इसराइल। इसकी पुष्टि दानियेल नबी की पुस्तक 12 अध्याय के 1 पद में की गई है, लिखा है, उसी समय मिकाइल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा, तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ न होगा, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। यहां पर कहा गया है कि उस समय कष्टों का समय होगा, महाक्लेश का समय। मिकाइल एक बार और शैतान को स्वर्ग से निकालेगा क्योंकि वह इसराइल का रखवाला प्रधान है। यह एक महान बात है और इसमें व्याख्या की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, घमासान होगा क्योंकि शैतान आसानी से पीछे नहीं हटेगा, परंतु अंत में मिकाइल और उसके स्वर्गदूत विजयी होंगे और शैतान उसके साथियों के साथ स्वर्ग से बाहर किया जाएगा। प्रभु यीशु ने इसकी चर्चा लुका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 18 पद में की है, जहां पर लिखा है, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। बड़े अजगर को पहचानने में गलती नहीं हो सकती क्योंकि उसका विवरण स्पष्ट किया गया है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उसकी उंगलियों के निशान दिए गए हैं क्योंकि परमेश्वर जानता था कि इस पीढ़ी के अधिकांश प्रचारक सिखाएंगे कि शैतान नहीं है। परमेश्वर ने इसी कारण यह किया है कि आप चूक न जाएं। यदि आपका बैरी आपको यह सोचने पर विवश कर दे कि वह नहीं है तो वह आप पर ही हावी होगा और उसका वार आपके पांव को उखाड़ देगा। मेरी पीढ़ी शैतान का अस्तित्व नहीं मानती थी, या यूं कहें कि पहले जो लोग थे वे शैतान के अस्तित्व को नहीं मानते थे, इसलिए वह उन पर नया नया वार करता था। हम उसके बारे में अधिक कुछ भी नहीं जान पाते हैं, परंतु हम सीख रहे हैं और उसे विचित्र एवं अनोखी वस्तु के रूप में हम मानते हैं, परंतु वह कुरूप नहीं है, वह तो ज्योति का स्वर्गदूत है। देखिए उसकी पहचान कैसे दी गई है। पहला है, वही पुराना सांप, अदन की वाटिका का सांप। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:44 में लिखा है, वह तो आरंभ से हत्यारा है। पुराना और आरंभ शब्दों का मूल अर्थ एक ही है। किसी धर्मात्मा ने कहा है कि शैतान ही वह पुराना सांप है जो अदन की वाटिका में था। और दूसरा पहचान है, उसे शैतान कहा गया है, जिसका मूल अर्थ है झूठ बोलने वाला या दोष लगाने वाला। पद 10 में उसे यही कहा गया है, भाइयों पर दोष लगाने वाला। यही कारण है कि हमें एक मध्यस्थ की आवश्यकता है। हमारा यह बैरी हमारे लिए पृथ्वी पर तो समस्या उत्पन्न करता है, स्वर्ग में भी हमारे विरोधी और हमारे विरोध में बातें कहता है, जिन्हें सुनकर हम आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसे आपने किया हो या सोचा हो या कहा हो जिसे विकृत करके वह आप पर स्वर्ग में दोष न लगाए। परंतु परमेश्वर जानता है, प्रभु यीशु हमारा मध्यस्थ है। पहला यूहन्ना की पत्री 2:1 में यूहन्ना कहता है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। जी हाँ, यदि मैं पाप ना करता तो कितना अच्छा होता। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे पास एक सहायक है, धर्मी प्रभु यीशु मसीह। वह हमें बचाने में बहुत अधिक व्यस्त है। आप यह न सोचे कि वह निष्क्रिय बैठा है, वह हमारी प्रतिरक्षा का कार्य करने में व्यस्त है। वह आज की सब झूठी बातों को भी जिसे शैतान लाता है हमें बचाता है। हमारी कलीसियाओं में होने वाली व्यर्थ की बातों का आरंभ कहां से है? नरक के कुंड से। मेरे मित्रों, वहां से कलीसिया में कुछ नहीं आना चाहिए। हम तीसरी बात देखते हैं शैतान के बारे में, इबलिस अर्थात बैरी। वह परमेश्वर और परमेश्वर की शैतान का भयानक बैरी है। पत्रस कहता है, पहला पत्रस 5:8 में, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। मुझे अनेक ऐसे जनों से पत्र प्राप्त होते हैं जो हमारे इस बाइबल अध्ययन के कारण विभिन्न धार्मिक पंथों से मुक्ति पा चुके हैं या ऐसे बंधनों से छुटकारा पा चुके हैं। ऐसे ही एक भाई ने लिखा, मैं एक धार्मिक पंथ में था और मैंने आपको फंसाने के लिए एक पत्र लिखा। मैं सोचता था कि आप गलत हैं और मैं सही हूं। जब मैंने वचन का अध्ययन आरंभ किया तो मुझे समझ में आ गया कि शैतान ने मुझे जकड़ रखा है। शैतान ने बहुत लोगों को फंसा रखा है, जिनमें कलीसिया के सदस्य भी हैं। हमें समझना है कि वह हमारा बैरी है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप आत्मिक संसार के चक्कर में पड़ जाएं। यह तो सच है कि आज उसका एक नया प्रकाशन है जो एक पीढ़ी पहले नहीं था। अपनी आंखें प्रभु यीशु में लगाए रखें, क्योंकि वही आपका मोक्ष है, वही आपको उद्धार दे सकता है और देता है, और वह स्वर्ग में आपकी मध्यस्थता के लिए उपस्थित है। चौथी और अंतिम बात, सारे संसार का भरमाने वाला है। महाक्लेश में शैतान मनुष्य को पूर्ण रूप से भरमाएगा। आज वह आंशिक रूप से हमें थोड़े थोड़े रूप में भरमाता है। वह मनुष्य को परमेश्वर और परमेश्वर के वचन के विरोध भरमाता है। उत्पत्ति की पुस्तक 3:1-4 में, उसने हवा को बहकाया कि परमेश्वर पर भरोसा ना करे। उसने कहा, क्या परमेश्वर ने कहा है कि इस वृक्ष का फल नहीं खाना? तू उसकी बात का भरोसा नहीं कर सकती? कर सकती है क्या? शैतान मनुष्य के संबंध में भी मनुष्य को भ्रम में डाल देता है। शैतान मनुष्य को उससे भी अच्छा बना देता है, परंतु फिर भी उसे तुच्छ समझता है। वह हमें मूर्ख बनाता है कि हम स्वयं ही परमेश्वर हैं, और ऐसा होना कैसी अद्भुत बात है। आप पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक 3:5 को। शैतान मनुष्य को सांसारिकता, देह और दुष्ट आत्मा के विषय में भरमाता है। हम सोचते हैं कि हम शैतान, संसार और देह पर जयवंत होने में सामर्थ हैं। परंतु हम वास्तव में असमर्थ हैं। संसार भाव सागर है जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। शैतान सुसमाचार के विषय भी मनुष्य को भरमाता है। वह चिंता नहीं करता है कि मनुष्य आराधना में जाए या अनेक कलीसियाओं के सदस्यता ले लें, परंतु मनुष्य का उद्धार पाना उससे देखा नहीं जाता है। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 4:4 में पौलुस कहता है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। किसी ने कहा है, शैतान से डरो, वह शेर है, और अधिक डरो, वह सांप है, बहुत ही अधिक डरो, वह स्वर्गदूत है। आज वह असंख्य जनों को ऐसे ही फंसाता है। मेरे मित्रों, मैं आपके बारे में नहीं जानता कि आप शैतान से डरते हैं या नहीं। मैं यह भी नहीं जानता कि आप अभी शैतान के चंगुल में फंसे हुए हैं या नहीं, परंतु परमेश्वर चाहता है कि आप छुड़ाए जाएं। आप शैतान को पहचाने कि वह आपको धोखा दे रहा है, वह मनुष्य को नाश करना चाहता है। समय आपके पास में है, निर्णय आपको लेना है और परमेश्वर को पहचान लेना है। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस अध्ययन के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
जय मसीह जय।